सिंहासन बत्तीसी।
सिंहासन बत्तीसी। सिंहासन बत्तीसी शाश्वत मूल्यों का बयान करती है ऐसी कथाएं जो आज भी पहले सी सार्थक हैं। सिंहासन बत्तीसी ऐसे किस्सों का संकलन है जो कभी पुराने नहीं होते। इन किस्सों को एक के बाद एक इस प्रकार गूंथा गया है कि एक बार पढ़ना शुरू करने के बाद बीच में छोड़ने का मन नहीं करता। इन दोनों विशेषताओं के कारण ही ये किस्से बड़ों छोटों नई पुरानी पीढ़ियों के बीच एक समान चाव से पढ़े जाते हैं। ये हमें सिखाते हैं कि जब कोई पद को पाने की लालसा के लिए आगे बढ़ता है तो उसे किस किस तरह के सवालों का सामना करना पड़ता है। इन श्रृंखलाबद्ध कहानियों का संदेश है कि राजा बनने का अधिकारी वही है जिसके व्यक्तित्व में सभी मानवीय गुण निहित हों, और राजा की सबसे बड़ी योग्यता है उसका प्रजा के हित के लिए जीना। हित अहित की पहचान के लिए आवश्यक है कि उसका व्यक्तित्व पूर्ण रूप से विकसित हो। सिंहासन बत्तीसी महाराजा विक्रमादित्य के जीवन से संबंधित नीति, दया, दान, धर्म, त्याग और उनके न्याय से संबंधित उन 32 कहानियों का संग्रह है जो उनके सिंहासन से जुड़ी 32 पुतलियों द्वारा राजा भोज को सुनाई गई थी। इन कहानियों से हम ये जान पाते हैं कि महाराजा विक्रमादित्य कौन थे, उनके न्याय करने का ढंग कैसा था, आखिर क्या कारण था कि वो महादानी, त्यागी, निस्वार्थी और न्यायप्रिय राजा के नाम से आज हजारों वर्ष बाद भी जाने जाते हैं, लोकप्रिय हैं। समाज नीति और धर्मशास्त्र से जुड़ी ये कथाएं आज भी उतनी ही सार्थक हैं जितनी कि अपने जन्मकाल में रही होंगी। ये बात उन दिनों की है जब राजा भोज उज्जैन नगर पर राज्य किया करते थे। राजा भोज आदर्शवान, नीति निपुण, धर्मपरायण और न्यायप्रिय राजा थे। प्रजा उनके राज्य में सुखी और संपन्न थी। समस्त आर्यावर्त में उनकी ख्याति फैली हुई थी। ये कहावत भी उन्हीं के समय से प्रचलित है, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। उज्जैन नगर के अंतिम छोर पर एक कुम्हारों की बस्ती थी। कुम्हार वहाँ मिट्टी के बहुत सुंदर और मनमोहक बर्तन बनाया करते थे। उनके द्वारा बनाए गए बर्तनों की कारीगरी दूसरे राज्यों में बड़े सम्मान के साथ देखी जाती थी और देश भर में उन बर्तनों की बहुत मांग थी, और यही कारण था कि राज्य के सभी कुम्हार बहुत संपन्न थे। कुम्हारों की बस्ती के आसपास मिट्टी के छोटे बड़े पहाड़ थे जिनकी मिट्टी बहुत सुगंधित और चिकनी थी। इससे जो बर्तन बनते थे वो बहुत आसानी के साथ भी बनते थे, मजबूत और सुंदर भी बनते थे। विदेशों में उन बर्तनों की मांग का शायद ये भी एक बड़ा कारण था। राजा भोज शासन काल में राज्य का प्रत्येक व्यक्ति संपन्न और सुखी था। खेती भी अच्छी होती थी और पशुधन की भी कोई कमी नहीं थी। उसी बस्ती में गडरिया कई वर्षों से काम करता चला आ रहा था। लोग उसे लंबू कहकर पुकारते थे, लेकिन उसका सचमुच का जो नाम था वो था ब्रिजभान। ब्रिजभान के घर से कुछ ही दूरी पर चतुरी चमार का घर भी था। वो दोनों पड़ोसी होने के साथ साथ एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और इस कहावत को चरितार्थ भी करते थे कि पड़ोसी जैसा दोस्त और पड़ोसी जैसा दुश्मन नहीं। एक जमाना था जब वो दोनों एक दूसरे पर जान न्यौछावर करते थे, लेकिन एक बार मकान के बीच दीवार को लेकर दोनों में अनबन हुई तो दोनों की दोस्ती दुश्मनी में बदलती चली गई। और अब चतुरी हमेशा उस अवसर की खोज में लगा रहता जब वो ब्रिजभान की कमजोरी बन जाए और उससे लाभ उठा सके, मगर उसे कोई मौका नहीं मिल रहा था। ब्रिजभान को चतुरी के ईर्ष्यालु स्वभाव की कोई परवाह नहीं थी। वो हमेशा चतुरी के परिवार के 10-10 आदमियों पर भारी पड़ता था। ब्रिजभान बड़े आराम से गांव के आसपास के क्षेत्र के लोगों के जानवरों को चराया करता था। आसपास के क्षेत्र में मिट्टी के बड़े बड़े पहाड़ थे। कुम्हार जब मिट्टी खोदते तो मजबूत ईंटें, मूर्तियां और घर गृहस्थी का सामान निकला करता था। लोगों का कहना था कि कभी वहां किसी राजा की बस्ती रही होगी। वो बस्ती एक भयानक भूकंप के कारण देखते ही देखते तबाह हो गई थी। वर्षों उधर कोई नहीं आया, फिर धीरे धीरे वहां कुम्हारों ने अपनी बस्ती बना ली थी और इसी कारण यहाँ की चिकनी और लोचदार मिट्टी थी। ब्रिजभान के एक लड़का था, उसका नाम चंद्रभान था। चंद्रभान काफी सेहतमंद था, कद काठी में भी अपने पिता से 2 कदम आगे ही था। वो भी अपने पिता की तरह जानवरों को चराने के लिए टीलों की ओर जाता था। जब धन के लोभी टीलों की खुदाई करके उसमें मिलने वाले सामान को उठाकर ले जाने लगते थे तो चंद्रभान उस सामान को हाथ भी नहीं लगाता था। उसकी नजरों में गर्भ से निकले सामान पर केवल राजा का अधिकार था। वो लोगों द्वारा उठाकर ले जाए जाने वाले सामानों को चोरी का नाम दिया करता था। लोग उसकी बातों का मजाक उड़ाते थे और उसे मूर्ख कहकर उस पर हंसते भी थे। चंद्रभान वैसे भी शक्ल सूरत से भोंदुई नजर आता था, लेकिन ताकत में किसी से कम नहीं था। वो टीलों पर जाता और जानवरों को आजादी के साथ चरने के लिए छोड़कर टीले पर चढ़कर सो जाता था। धीरे धीरे लोग उसे आलसी और निकम्मा कहने लगे थे। उसका स्वभाव देखकर कुछ लोग शरारत में उसके जानवर इधर उधर हांक देते थे। कभी कभी उसकी नजरें बचाकर चोरी जैसा काम भी कर लेते थे। मगर सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह होती थी कि शाम को जब चंद्रभान अपने जानवरों को हांक कर ले चलता तो जानवर पूरे होते थे। इधर उधर भगाए गए जानवर अपने आप ही लौटकर अपने झुंड में मिल जाते थे। जो लोग उसके जानवरों को चुरा लेते थे उनके घर में कोई न कोई ऐसी विपत्ति खड़ी हो उठती थी कि वे घबराकर जानवर को छोड़ देते और जानवर भागकर अपने झुंड में आकर मिल जाता। धीरे धीरे चंद्रभान के साथ शरारत करने वालों में ये चर्चा होने लगी कि चंद्रभान चमत्कारिक शक्तियों वाला लड़का है। कोई कहता उस पर दैवीय शक्ति है जो उसकी हर कष्ट में रक्षा करती है। लोगों ने उसके साथ शरारत करना छोड़ दिया। चंद्रभान की बातें भी ज्ञान ध्यान की होती थीं। वो बच्चों को टीले पर इकट्ठा करता और उन्हें ज्ञान ध्यान की बातें बताता था। लड़के ध्यान लगाकर उसकी बातों को सुना करते थे। कभी कभी बच्चों के बीच बड़े भी शामिल हो जाया करते थे और उसकी ज्ञानवर्धक बातें सुनकर वाह वाह किया करते थे। यही चंद्रभान जब टीले से उतरकर जानवरों को हांकता हुआ अपने घर की ओर जाता था तो वो चेहरे से भोंदू और अनपढ़ नजर आता था। चंद्रभान हमेशा की तरह एक दोपहर को एक टीले पर चढ़ गया और गहरी नींद सो गया। जब वो सोकर उठा तो उसे बड़ा अजीब सा लगा। उसने आसपास खेल रहे लड़कों को पुकारा। लड़के खेल छोड़कर उसकी ओर दौड़े चले आए। उन्होंने सोचा शायद चंद्रभान उन्हें अच्छी अच्छी बातें बताएगा, कुछ उपदेश सुनाएगा। बाकी लोगों को भी बुलाओ, चंद्रभान ने कुछ तेज स्वर में कहा। क्या बात है, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? लड़कों ने उसका तेज स्वर जब सुना तो ऐसा कहा। यहाँ का राजा कौन है? चंद्रभान बड़ी शान से बोला। सब लड़के एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वो सोचने लगे आखिर चंद्रभान ने ये अटपटा सवाल क्यों पूछा है? क्या ये पागल हो गया है? देश की जनता अपने राजा का नाम न जानती हो, ये कैसे संभव है? चंद्र भाई, तुम कैसी बेकी बातें कर रहे हो, अपने राजा का नाम भी भूल गए? हमारे महाराज का नाम भोज है, एक लड़के ने कहा। लड़के की बात सुनकर चंद्रभान का चेहरा तमतमा उठा। वो क्रोधित स्वर में बोला, वो राजा मूर्ख है, उसे न्याय करना नहीं आता। प्रजा के साथ वो अनुचित व्यवहार करता है, उसे पकड़कर हमारे दरबार में पेश किया जाए। सब लड़के फटी फटी आंखों से उसकी ओर देखने लगे। उनके चेहरों पर भय के निशान साफ नजर आ रहे थे। वो सोचने लगे कि या तो चंद्रभान पागल हो गया है या उसके दिन पूरे हो गए। अगर ये बात महाराज तक पहुंच गई तो इसे जरूरी फांसी पर लटका दिया जाएगा। उन सबको खामोश देखकर चंद्रभान ने एक बार फिर तेज स्वर में सीखा, सुना नहीं तुम लोगों ने? उसे फौरन पकड़कर हमारे दरबार में पेश करो, हम उसे बताएंगे कि न्याय कैसे किया जाता है। चंद्रभान राजा के प्रति ऐसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना उचित नहीं, एक लड़के ने उसके पास आकर उसे समझाने वाले अंदाज में कहा। उचित या अनुचित की बात हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता, यहाँ तक कि तुम्हारा राजा भी नहीं जानता, चंद्रभान बहुत निडरता के साथ बोला। उसके चेहरे पर भय और आतंक का कोई निशान नजर नहीं आ रहा था, लेकिन लड़कों के चेहरों के रंग तो उड़ चुके थे। वो सोच रहे थे कि अगर किसी ने इस बात को सुन लिया और जाकर राजा से शिकायत कर दी तो चंद्रभान के साथ साथ वे भी राजा का अपमान करने के दोषी माने जाएंगे, क्योंकि वो लोग अपने राजा के विरोध में बातें सुन रहे हैं। चंद्रभान अभी भी राजा के विरोध में बोले चले जा रहा था। लड़कों के दिल में डर बढ़ता चला जा रहा था। एक एक करके सब लड़के वहां से डर के कारण भाग गए। भागते हुए एक युवक ने कहा, यहाँ से भाग लेने में ही हमारी भलाई है, ऐसे व्यक्ति की बातें सुनना भी गुनाह है। अगर किसी ने उसकी बातें सुन ली और हमें यहाँ खड़ा पाया तो हम भी बेमौत मारे जाएंगे। लेकिन चंद्रभान अब तो उस टीले पर बैठकर छोटे छोटे से लेकर बड़े बड़े तक न्याय बड़े आत्मविश्वास के साथ करने लगा। और आखिरकार एक दिन राजा भोज को भी पता चला कि एक साधारण सा चरवाहा अपनी न्यायप्रियता के लिए विख्यात है, जबकि वो बिल्कुल अनपढ़ है और पुश्तैनी रूप से उनके ही राज्य के कुम्हारों की गाय भैंसे और बकरियां चराता है। जब राजा भोज ने तहकीकात कराई तो पता चला कि चरवाहा सारे फैसले एक टीले पर चढ़कर करता है। राजा भोज की जिज्ञासा बढ़ी और उन्होंने खुद भेष बदल कर उस चरवाहे को एक जटिल मामले में फैसला करते देखा। उसके फैसले और आत्मविश्वास से भोज इतना अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने उसकी इस अद्वितीय क्षमता के बारे में जानना चाहा। जब चरवाहे ने बताया कि ये शक्ति उसमें इस टीले पर बैठने के बाद ही आती है और नीचे उतरने पर स्वतः चली जाती है, भोज ने सोच विचार कर टीले को खुदवा कर देखने का फैसला किया। जब खुदाई हुई तो एक राज सिंहासन मिट्टी में दबा दिखा। यह सिंहासन कारीगरी का अभूतपूर्व रूप प्रस्तुत करता था, जिसमें 32 पुतलियां लगी हुई थीं और कीमती रत्न जड़े हुए थे। जब धूल मिट्टी की सफाई हुई तो सिंहासन की सुंदरता देखते ही बनती थी। उसे उठाकर महल में लाया गया और शुभ मुहूर्त में राजा का बैठना निश्चित किया गया। लेकिन ज्यों ही राजा ने बैठने की कोशिश की, सारी पुतलियां राजा का उपहास करने लगी और कहने लगी कि ये राज सिंहासन राजा विक्रमादित्य का है और इस पर बैठने का अधिकारी वही हो सकता है जो उनकी तरह न्यायप्रिय, दानी और उनके जैसे सारे गुणों से भरपूर हो। उनके गुणों का बखान 32 पुतलियों ने अपनी 32 कथाओं में राजा भोज को दिया और यही कथाएं कहलाती हैं सिंहासन 32, जो अब हम आपको सुनवाएंगे लगातार। ये थी arparijo.com की प्रस्तुति।